समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा में आज के संस्करण में आपका स्वागत है। आज के सफर में आपके साथ हूं मैं चारु सक्सेना और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। हाय अभिषेक।
हाय चारु, हाउ आर यू?
या फाइन अभिषेक, एक बात बताओ, आपको शॉपिंग का शौक है?
Absolutely, Charu. But I'd say that I'm more of an impulse shopper. I tend to pick up random things that catches my eye, though I may not have the need for them at that particular time. You know.
अच्छा वैसे एक बात बताऊँ, अगले कुछ दिन में दुनिया भर में लोग भारी डिस्काउंट पर शॉपिंग करेंगे और पर मजे की बात ये है कि आज भी बहुत सी ऐसी कीमती चीजें हैं जिन्हें कोई खरीद नहीं सकता। नींद, आराम, चैन, तसल्ली, हंसी, खुशी, आदर, विश्वास और प्यार। शुक्र है कि सब मुफ्त हैं।
Absolutely, Charu, and isn't it surprising that that some of the best things in life are free and we don't need to pay a penny for them, you know?
They're
absolutely free and they're the best things in the world.
वैसे बता दें कि आज फ्राइडे है, फिर स्टार्ट हो जाएगा वो डे सैटरडे से। सो अब आज क्या ले रहे हो भाई?
Yes, good afternoon, listeners. You're tuned to Parikraman 100.1 FM. I'm Abhishek Mukhopadhyay. With me today is my co-host Charu Saxena. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
गृह मंत्री अमित शाह ने आज भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में भाग लेंगे।
Both houses of parliament adjourned for the fourth day in a row amid ruckus by opposition on various issues.
सरकार ने लोकसभा में कहा भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं से संबंधित स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है।
सुप्रीम कोर्ट आज संभल शाही जमा मस्जिद कमेटी टू मूव हाई कोर्ट इन मॉस्क सर्वे केस, डायरेक्ट ट्रायल कोर्ट हॉल प्रोसीडिंग स्टिल प्लीज लिस्टेड इन हाई कोर्ट।
और बैडमिंटन में पीवी सिंधु सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट के महिला एकल सेमीफाइनल में पहुंच गयी।
Yes, and now, Charu, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about the Hornbill Festival. Well, Nagaland is making grand preparations for the Silver Jubilee edition of the Hornbill Festival, scheduled to be held from the 1st to the 10th of December. The festival is held at the scenic Kisama Heritage Village, located about 12 kilometers from the state's capital of Kohima. And Charu, many international and domestic tourists are expected to arrive in the northeastern state to experience the rich and vibrant culture of Nagaland's 18 major tribes.
There's a place where love transcends, people so warm and kind, caring and helpful to know they do, and hearts so true, with love as their guiding light. This is the land we all call home.
Yes, the Hornbill Festival, also called the Festival of Festivals, was conceptualized to showcase Naga culture, traditional and contemporary, in the spirit of unity in diversity. The annual Hornbill Festival is a spectacular event showcasing the rich ancient culture and civilization of the people of Nagaland. It powerfully demonstrates the cultural diversity and civilizational unity of the people. And Charu, the festival shows how each tribe is proudly unique in the cultural richness, and yet there is an overwhelming sense of unity among all. And this spectacular demonstration of unity and diversity in what is India all about. And at the Hornbill Festival, one can get a glimpse of the Indian spirit of happy, peaceful coexistence of multiplicities.
अभिषेक, नागालैंड में प्रत्येक जनजाति अपना त्योहार समर्पण और जुनून के साथ मनाती है और देखिए कि एक ही छत के नीचे सांस्कृतिक प्रदर्शनों का मिश्रण प्रस्तुत करता है। ये बहुत लोकप्रिय संगीत समारोह भी साथ में आयोजित किया जाता है और इस उत्सव का नाम विश्व स्तर पर सम्मानित पक्षी हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है, जो राज्य के अधिकांश जनजातियों में लोक कथाओं में प्रदर्शित होता है। सप्ताह भर चलने वाला जो ये त्योहार है, ये नागालैंड के सभी लोगों को एकजुट करता है और लोग रंगारंग प्रदर्शन, शिल्प, खेल, भोजन और समारोह का जो है वो आनंद लेते हैं। पारंपरिक कलाएं जिनमें पेंटिंग, लकड़ी की नक्काशी और मूर्तियां, ये सभी मतलब शामिल है। और महोत्सव के मुख्य आकर्षण में पारंपरिक नागा मोरुंग कला और शिल्प प्रदर्शनी, खाद्य, हर्बल मेडिसिन स्टॉल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गाने, नृत्य, पारंपरिक तीरंदाजी, नगा कुश्ती, स्वदेशी खेल, सब कुछ शामिल है इसमें।
Yes, Charu, and the Hornbill Festival is held at the heritage village of Kisama, about 12 kilometers from Kohima. And the nomenclature of Kisama is derived from two villages, namely Kigwema, K-I, and Fisama, S-A. An MA, which means village on which land, the Naga Heritage Village, is established and commissioned by the state government of Nagaland. And Charu, the heritage complex consists of a cluster of 17 indigenously designed houses, also called Morang, meaning youth dormitory, each representative of a different tribe. And the goal, of course, is creating the heritage village is the protection and preservation of the ethnic cultural heritage through a common management approach and comprehensive data base for the perpetuation of tourism promotion. And since its inception in the year 2000, it has brought about radical changes in the tourism scenario of the state. And also, Charu, a visitor gets the opportunity to catch a ringside view of all the Naga tribes, their culture and distinctiveness at one place.
हम आपको बताएं कि सिक्किम की मुख्यमंत्री ने इस साल फेस्टिवल के लिए नागालैंड के दल को हरी झंडी दिखाई और सिक्किम को इस आयोजन के लिए भागीदार राज्य के रूप में मान्यता भी दी। और देखिए, इससे फायदा यह कि साझा सांस्कृतिक मूल्यों को ये दर्शाता है और राज्यों के बीच एकता को बढ़ावा देता है। देखिए, इससे साझेदारी न केवल दोनों राज्यों के बीच संस्कृति का जश्न मनाने के लिए है, बल्कि उनके संबंधों को मजबूत करने के लिए भी है। और अभी ये समय समय पर मिनी हॉर्नबिल तैयार करके मनाए जाते हैं। ये त्योहार व्यापक रूप से लोकप्रिय भागीदारी और खुशी के दायरे को बढ़ा रहा है। इस तरह की पहल से देशवासियों को नागाओं की संस्कृति समृद्धि को समझने में मदद मिलेगी। देखिए, लोकगीत और नृत्य पारंपरिक नागा संस्कृति के आवश्यक तत्व हैं। गीतों और लोक कथाओं के माध्यम से परंपरा को जीवित रखा जाता है और प्रसिद्ध पूर्वजों की इसमें कहानियां सुनाई जाती हैं। कृषि मौसम से जुड़े गीत विशेष गतिविधियों का वर्णन करते हैं और युद्ध नृत्य भी नागालैंड में एक आंतरिक कला का रूप है।
Yes, absolutely. And being the milestone Silver Jubilee edition, the festival has gained international support with countries like Japan, Peru and Wales partnering with Nagaland. And on his ex-handle, Chief Minister Nephew Rio has informed that Japan will participate in cultural and musical performances as well as conduct workshops on handicrafts. And Peruvian artists and cultural performers will also take part in various events. So Charu, Nephew Rio has expressed the hope that this collaboration will foster stronger bilateral relations.
और अभिषेक, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है विशेष।
Yes, Charu, and the Union Minister for Culture Gajendra Singh Shekhawat inaugurated a painting exhibition named Sunyata at the National Museum in New Delhi today, and the exhibition is collections of paintings which focus on the ideas of In Substance and Emptiness. We have more details from our correspondent Bhanu Pratap Singh.
Shunyata is derived from a Buddhist philosophy which means form is emptiness and emptiness is form. The word shunyata is translated as in substance or emptiness. Each canvas in this exhibition displays approximations of figures, familiar and unfamiliar, god and goddesses, mortals and immortals become objectively manifest. As one walks away, forms dissolve and insubstantiality remains. Talking exclusively to Akashvani News, artist Abhay K. highlighted that he has depicted the philosophy through a series of 60 paintings. He added that the paintings convey the nature of reality, which is emptiness.
Shunyata is a Buddhist philosophy which says form is emptiness and emptiness is form. And I have tried to visualize and depict this philosophy through a series of 60 paintings. These paintings convey the nature of reality, which is emptiness, which is shunyata, and also convey the message of impermanence, that whatever we see is not what the reality is, but ultimate reality is shunyata or emptiness.
The exhibition is open from 10 a.m. to 6 p.m. till the 8th of December. For Parikrama, with Akshat Vaidyan, Bhanu Pratap Singh.
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तराखंड में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना का लाभ राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी आबादी तक पहुंच चुका है। उत्तराखंड में योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारे संवाददाता साक्षी सिंह के पास।
उत्तराखंड में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं, साथ ही शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आवास विहीन परिवारों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक राज्य में 34,000 से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। अब राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण के लिए भारत सरकार के साथ अनुबंध भी किया है। इस योजना में 3 लाख से 18 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले आवासहीन परिवारों को 4 घटकों के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना के प्रथम चरण के तहत राज्य में कुल 64,391 आवासों की स्वीकृति भारत सरकार से हो चुकी है, जिसमें लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के तहत कुल स्वीकृति 25,976 आवासों में से अक्टूबर माह तक 12,222 आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। शेष आवासों पर कार्य गतिमान है। इसमें भारत सरकार द्वारा कुल 1.5 लाख प्रति आवास की दर से लगभग 263,71,00,000 रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा 50,000 की अनुदान राशि प्रति आवास उपलब्ध कराई जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना लाखों आवास विहीन परिवारों को छत उपलब्ध करा रही है। उत्तराखंड में ही योजना के तहत हजारों लोगों के पक्के मकान बन चुके हैं। इसमें केंद्र के साथ ही राज्य सरकार भी सहायता उपलब्ध करा रही है। शहरी विकास के सचिव नितेश झा ने बताया कि अब भारत सरकार ने इस साल सितंबर में प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण की घोषणा की है। इसके लिए भारत सरकार ने अब प्रति आवास केंद्रांश 1.5 लाख से बढ़ाकर 2,25,000 रुपए कर दी गई है। इस तरह अब योजना के तहत लाभार्थियों को अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह।
तो भाई ऐसा है, अब परिक्रमा भी उत्तराखंड से चलते हैं चेन्नई।
यस, एंड इन चेन्नई चारू टू बिल्ड अ सेफर ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास इन एसोसिएशन विद हेल्थ हैज अनाउंस्ड अ नेशन वाइड कॉन्टेस्ट टू बूस्ट इनोवेशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। वी हैव अ रिपोर्ट।
IIT Madras and TALES unveiled top 6 teams developing eco-friendly technology for Carbon Zero Challenge 4.0. Indian Institute of Technology Madras, in association with TALES, has announced the top 6 teams developing eco-friendly technology from the fourth cohort of the Carbon Zero Challenge, a nationwide contest to boost innovation in this sector. As part of TALES CSR and solidarity efforts in India, TALES supported this transformative eco-innovation and entrepreneurship challenge. The top 6 teams will receive a startup seed funding of up to 10 lakhs. The CSC challenge aims to accelerate groundbreaking solutions to address climate change and foster sustainability. The third edition was supported by TALES and Aquamap, Center for Water Management and Policy at IIT Madras, and reached out to over 1,600 students and researchers from 600 universities and 270 startups across India. In line with TALES, Environmental, Social and Governance Strategy, TAIL supported the program for a second consecutive year for its fourth edition, showcasing its commitment to building a safer, greener and more inclusive world. The final 25 teams were shortlisted from the initial list of 500 teams. These teams embarked on a rigorous six-month journey from April to develop sustainable prototypes across various sectors, including energy, materials, agriculture, air and water. Professor Indumati Nambi, Carbon Zero Challenge Coordinator, IIT Madras said, with a focus on fostering eco-startups addressing global challenges like climate change, pollution and circular economy, CSC 4.0 attracted over 2,000 participants from 775 universities and 430 startups across India. 30 successful startups have emerged from CSC's previous cohorts, with another 35 advancing toward commercialization. Participating teams received up to 500,000 in funding and mentorship to develop their prototypes. This is Blessy from Akashvani, Chennai.
Yes, from Chennai now we move over to Gangtok and the Northeast Regional Center, Indian Council of Historical Research, NERCICHR, Guwahati, in collaboration with Sikkim University, kick-started the two-day national seminar on the Indian Constitution and the idea of Ram Raj at Chintan Bhavan, Gangtok. Let's listen more from a correspondent, Dilli Ram Dulal.
The Northeast Regional Center Indian Council of Historical Research, NERCICHR, Guwahati, in collaboration with Sikkim University, organized a two-day national seminar on the Indian Constitution and the concept of Ram Raj at Chintan Bhavan, Gangtok. The event was inaugurated by Dr. Jyoti Prakash Tamang, Vice Chancellor of Sikkim University, and featured chief guest Dr. Bal Mukund Pandey, keynote speaker Prafulla Ketkar, and special guest Professor Himanshu Kumar Chaturvedi of ICHR. The seminar explored the philosophical and cultural dimension of Ram Raj, symbolizing justice, equality and welfare as reflected in the Indian Constitution. Key themes include the Constitution making, its illustration, cultural continuity, Gandhi's vision of Ram Raj and its theological distinction. The event brought together scholars, faculty and students from across India. Dilli Ram Dulal, Akashvani News, Gangtok for Parikrama.
And now for some news from the business world. Domestic benchmark equity indices today displayed a positive momentum. Both indices ended with gains of over 0.9%, supported by a rally in blue chip stocks. The 30-share BSE Sensex jumped 759 points, or 0.96%, to close at 79,803, and the NSE Nifty 50 rose 217 points, or 0.91%, to settle at 24,131. In the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading up at 76,750 rupees for 10 grams. Silver 999 fine is also trading up at 89,560 per kilogram when reports last came in.
Abhishek, jiska sports mein interest hota hai na, usse bahut maza aata hai. Dekhiye, ye match bhi dekhna hai, wo match bhi dekhna hai. Aur sach mein khel premi hona badi mehnat ka kaam hai. To aap zara bataiye ki khel ki duniya mein kya halchal hai.
Yes, Charu, and the star Indian shuttlers PV Sindhu and Lakshya Sen today moved to the semi-finals of the Syed Modi International Super 300 Badminton Tournament. Both ace shuttlers registered straight game wins at the Babu Banarsi Das Indoor Stadium in Lucknow to advance to the semis. Lakshya, the 2021 World Championships bronze medalist, dominated his match beating compatriot Miraba Luang Meshnam 21-8, 21-19 in the men's singles quarterfinals. And top seed Sindhu, a two-time champion at the event in 2017 and 2022, defeated China's Dai Wang 21-15, 21-17 in a 48-minute women's singles quarterfinal. In the mixed doubles quarterfinal, the Indian pair of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto defeated the Malaysian duo Lu Bing Kun and Ho Lo Yi. And on the other hand, the Indian duo of Satish Kumar and Adya Veriyat lost to Pua Varun Kro, Decha Pol and Supisara Piersampran of Thailand. And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
आज हम स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर को याद करते हैं, जिनका जन्म 29 नवंबर 1869 को हुआ था।
ठक्कर बापा के नाम से लोकप्रिय अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर ने भारत के कई राज्यों में तथाकथित निम्न जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए अपने जीवन के 35 से अधिक वर्ष समर्पित कर दिए।
बापा का जन्म गुजरात के भावनगर में हुआ था। उन्होंने पोरबंदर, युगांडा, बॉम्बे नगरपालिका में एक इंजीनियर के रूप में और तत्कालीन सांगली राज्य के मुख्य अभियंता के रूप में भी काम किया। कुर्ला के बॉम्बे उपनगर में काम करते हुए बापा तथा कथित निम्न जातियों की दयनीय स्थिति से विचलित हुए।
शोषित वर्ग मिशन के सदस्य रामाजी शिंदे की मदद से उन्होंने कुर्ला में सफाई कर्मियों के बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। 1914 में वे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में शामिल हो गए। गोपाल कृष्ण गोखले ने उनका परिचय महात्मा गांधी से कराया और उन दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया।
1920 में बापा ने ओडिशा का दौरा किया और अकाल के दौरान राहत कार्य भी किया। 1923 में उन्होंने आदिवासी उत्थान के लिए प्रयासों के तहत भील सेवा मंडल की स्थापना की। वे 1926 में भावनगर राज्य विषय सम्मेलन के अध्यक्ष बने और 1928 में उन्होंने काठियावाड़ स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की।
1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ठक्कर बापा को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्हें 40 दिनों के बाद ही रिहा कर दिया गया।
Yes, and now we have reached that section in a program wherein we remember all those greats who are associated with today's date. And we start off, Charu, with Cary Grant, born Archibald Alec Leach, who passed away on this day in 1986. He was an English and American actor, known for his mid-Atlantic accent, debonair demeanor, light-hearted approach to acting, and a sense of comic timing. He was one of classic Hollywood's definitive leading men. He was nominated twice for the Academy Award, received an Academy Honorary Award in 1970, and received the Kennedy Center Honor in 1981. He was named the second greatest male star of the Golden Age of Hollywood by the American Film Institute in 1999. Yes, and also James Walter Braddock passed away on this day in 1974. He was an American boxer who was the world heavyweight champion from 1935 to 1937. Braddock was known for his spoiling counter-punching style, powerful right hand, and his iron chin. He had lost several bouts due to chronic hand injuries and was forced to work on the docks and collect social assistance to feed his family during the Great Depression. He made a comeback in 1935. He fought Max Beer for the World Heavyweight Championship and won. And for this unlikely feat, he was given the nickname Cinderella Man by Damon Runyon. Braddock was managed by Joe Gold.
और अभिषेक, आज ही के दिन लेखिका इंदिरा गोस्वामी का निधन 2012 को हुआ। असमिया की सुपरिचित लेखिका इंदिरा गोस्वामी पूर्वोत्तर में मामोनी रायसम गोस्वामी के नाम से मशहूर थी और उन्होंने असमिया लोगों के दुखों को स्वर दिया। उन्हें साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार समेत कई सम्मान मिले। उन्होंने स्कूली जीवन से ही कहानियां लिखना शुरू कर दिया और वो दिल्ली विश्वविद्यालय में असमिया की प्रोफेसर रही। गोस्वामी ने असम के उग्रवादियों के अंतर्मन को समझा और केंद्र सरकार और उग्रवादियों के बीच शांति वार्ता की मध्यस्थता भी की।
Yes, and John Knowles passed away in this day 2001. He was an American novelist best known for A Separate Peace in 1959. Knowles was born on September 16, 1926 in Fairmont, West Virginia, the son of James M. Knowles, a purchasing agent from Lowell, Massachusetts, and Mary Patricia Knowles from Concord, New Hampshire. His father was a coal company executive which earned an income that afforded the family a comfortable living. And as a youth, Knowles would remark that he could write just as well as the stories from the Saturday Evening Post.
स्वतंत्रता सेनानी और शायर अली सरदार जाफरी का जन्म आज ही के दिन 1913 को हुआ। जाफरी साहब ने आवाम की मुक्ति के लिए हर क्षेत्र में अपनी कलंक चलाई, साथ ही आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग दिया और आजादी के बाद भी सक्रिय सामाजिक जीवन जिया। जाफरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे फिराक गोरखपुरी और कुर्तुल एन हैदर के साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले उर्दू के तीसरे साहित्यकार थे। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे उत्तर प्रदेश सरकार के उर्दू अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार के इकबाल सम्मान से भी सम्मानित हुए।
जहांगीर रतनजी दादा बॉय टाटा और जेआरडी टाटा पास्ड अवे ऑन दिस डे 1993। ही वाज एन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, एविएटर एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द टाटा ग्रुप। Born into the Tata family of India, he was the son of noted businessman Ratanji Dadabhoy Tata and his wife Suzanne. He was best known for being the founder of several industries under the Tata Group, including Tata Consultancy Services, Tata Motors, Titan Industries, Tata Salt, Voltas and Air India. In 1982, he was awarded the French Legion of Honor, and in 1955 and 1992, he received two of India's highest civilian awards, the Padma Vibhushan and the Bharat Ratna. And these honors were bestowed on him for his contributions to Indian industry.
Shahid Kaptan की बात करते हैं हम। बहुत सारे जितने भी लोग सैनिक हमारे यहाँ से गए हैं उनको हम हमेशा सैल्यूट करते हैं। तो देखिए आज भी हम किसी को याद कर रहे हैं, वो है शहीद कैप्टन गुरबचन सिंह। जी हाँ, इनका जन्म आज ही के दिन 1935 को शगरगढ़ के जनवल गांव में हुआ था और ये स्थान अब पाकिस्तान में है। कैप्टन गुरबचन सिंह ने अफ्रीका के कांगो में भारत द्वारा भेजी गई शांति सेना का नेतृत्व करते हुए 40 विद्रोहियों को मार गिराया, लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। वो उस समय सिर्फ 26 साल के थे। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से नवाजा। भारत का अपना संविधान लागू होने के बाद ये सम्मान पाने के कारण उन्हें भारत गणतंत्र के पहले परम वीर चक्र विजेता होने का गौरव प्राप्त हुआ।
Chadwick Aaron Boseman was born on this day in 1976. He was an American actor known for portraying African-American historical figures and fictional African superhero Black Panther. And during his two-decade career, Boseman received accolades including two Screen Award, Actors Guild Awards, a Golden Globe Award and a Primetime Emmy Award, along with an Academy Award nomination. He portrayed historical figures starring as singer James Brown in Get On Up 2014 and as Thurgood Marshall in Marshall 2017. And Anna K. Faris was born on this day in 1976. She is an American actress known for playing comedic roles. She rose to prominence with the lead part of Cindy Campbell in the Scary Movie film series from 2000 to 2006. Her film credits include The Hot Chick 2002, Lost in Translation 2003, Brokeback Mountain 2005, Just Friends 2005, My Super Ex-Girlfriend 2006, Smiley Face 2007, The House Bunny 2008, What's Your Number 2011, The Dictator 2012, and Overboard 2018. And also Donald Frank Chidell Jr. was born on this day in 1964. He is an American actor known for his roles in film and television. He has received multiple accolades. Chidell's career started with supporting roles in Hamburger Hill, Colors, Devil in Blue Dress, Rosewood, Boogie Nights, and Blueworth. He collaborated with director Steven Soderbergh, acting in Out of Sight, Traffic, and the Oceans trilogy. And also Charu Jason Terrell Taylor was born on this day in 1979, better known by his stage name The Game or simply Game. He's an American rapper. Born in Compton, California, he initially released a series of mixtapes under the wing of fellow West Coast rapper JT, the Bigger Figure. After releasing his debut album Untold Story independently in 2004, he was discovered by record producer Dr. Dre. Let's listen in to his hit track, Hate It or Love It, and it's from his 2005 album, The Documentary.
Coming up, I was confused. My mama kissing a girl. Confusion occurs coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to sing, check out my melody. I wanna live good, so shit, I sell dope. Four finger ring, one of them gold ropes. Nana told me if I pass, it'd be the sheepskin coat. If I can move a few packs, I get the hat. Now that'd be dope, tossed and turned in my sleep that night. Woke up the next morning, niggas just stole my bike. Different day, same shit, ain't nothing good. In the hood, I run away from this bitch and never come back if I could.
Yes, and The Game rose to fame in 2005 following the release of his major label debut album, Doctor's Advocate.
So, परिक्रमा में आज बस इतना ही। मैं चारू, अभिषेक और अपने एडिटर यूके विश्वास और प्रोडक्शन असिस्टेंट अरुणदीप के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार।